अब यहां से अबू बकर की बात, जब बेटी पे इल्जाम लगाया उस शख्स ने जिसको आप खुद पाल रहे थे, जो इसके आप कफील थे, टेक केयरर थे, तो हजरत अबू बकर को एक बाप होने के नाते गुस्सा आया, कसम खा ली, आज के बाद मस्तों को एक पैसा नहीं दूंगा। जायज थी, बेटी का बाप होने के नाते तो इस 100% रो, लेकिन मुकामे सिद्दीकियत से एक हल्की बात थी। अल्लाह ताला ने कह दिया, तुम में से जो लोग साहिब फजल और साहिब कुदरत हैं, वो इस बात की कसम न खा बैठे कि अपने रिश्तेदार मिस्कीन और मुहाजिर फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद ना करें, इन्हें माफ कर देना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। अला तुहिब्बुना यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला और रहम वाला। जब ये आयतें उतरी तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, यस अल्लाह, हम चाहते हैं कि आप हमें माफ करें। ना सिर्फ ये कि मस्तों को माफ किया, जो वजीफा दे रहे थे वो या उससे ज्यादा और देना शुरू कर दिया। 3 सेकंड जरा सोचे, अबू बकर की जगह अल्लाह ना करे हम में से कोई हो, हमारी बेटी पे कोई इल्जाम तो लगा दे, और हमारी बेटी आयशा जैसी भी पाक दामन नहीं होगी, हो सकता है इल्जाम की 5% वजह भी समझ आए लोगों को, लेकिन हम कभी उसको माफ करें? जी ऐस जन्नत के सौदागर कि जिनको जन्नतें पानी होती है ना, वो अपनी अना को बड़े नहीं समझते, फौरन माफ कर देते हैं। अब एक सोसाइटी में ऐसे मामलात पे क्या रिएक्शन होना चाहिए? जो लोग पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमतें लगाते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई और इनके लिए बड़ा साफ है, वो इस दिन को भूल ना जाए जबकि इनकी अपनी जुबानें और इनके अपने हाथ पांव इनके करतूतों की गवाही देंगे। इमेजिन करें, हाथ बोल रहे हैं, जुबान बोल रही है कि ये करता था, ये गलत काम करती थी, और इस दिन अल्लाह वो बदला इनको पूरे का पूरा देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं, और इनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ही हक है, सच को सच कर दिखाने वाला। तो الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। इनका दामन पाक है इन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, और इनके लिए मगफरत है और रिज़्क़े करीम। बड़ी खूबसूरत आयत है। एक तो रिश्तों का मेयार है, बेटा पाक है तो नेक है, नमाजी है, नेक बच्ची लाइए, बेटी नेक है, साफ पाक है, नेक रिश्ता ढूंढिए, जब आएगा मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन अगर आपका बेटा शराबी पापी है तो मत किसी की नेक बच्ची लाए और कि ये बच्ची खुद ही इसको ठीक कर लेगी। आप कहते नमाजी और बेनमाजी का रिश्ता जुड़ता ही नहीं है, निकाह होता ही नहीं है। अब आप बोलिए, जब हम शादियां करते हैं और उस वक्त ये तक नहीं पूछ रहे कि शादी है कि नहीं, लड़का नमाजी है कि नहीं, घर कैसे पनपेगा? अल्लाह ने नमाज और जिना को इतना साथ जोड़ के पेश कर दिए कि जब वो हदीस पढ़ते हैं तो फिक्र लग जाती है कितने जोड़े हैं जो जायज जिंदगी गुजार भी रहे हैं कि नहीं। इस वक्त की जनरेशन से जो ऊपर की पेरेंट्स के भी ऊपर के लेवल के, उनके अंदर ये बहुत खराबी आई। माँ बाप इतने कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए रिश्ते करते वक्त, उन्होंने पूछा नहीं। ऐसी औरतें आज भी नासूर गुजार रही हैं जिंदगी का कि जहां मर्द शराबी हैं और औरतें 5 वक्त की नमाजी हैं। तो भी क्या हुआ? नहीं, कहा ये था उन्होंने इस घर से, अब तुम्हारी लाश जाएगी, तुम्हारी मैयत जाएगी। भैया आप 35 साल हो गए अपने मर्द को बर्दाश्त करें, अब क्या पूछने आई है मुझसे? क्या ख्याल है, अब मैं थक गई हूं, मैं तलाक ले लूं? अब बहुएं भी आ रही हैं घर में, दामाद आते हैं, ये शराब के गुल गपाड़े में मेरी बेइज्जती करते हैं, मैं नहीं रह सकती। मैंने कहा सिस्टर 35 ईयर्स, बड़ी देर की आपने। कहती मैंने सोचा ठीक हो जाएंगे, ठीक सारी जिंदगी बर्दाश्त करती रही। ये जिंदगी नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये कुफर है। अल्लाह ना करे किसी बुरे से वास्ता पड़ गया, फौरन निपट लीजिए। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, 4 बच्चे, सारी, और सिर्फ ये बात, लोग क्या कहेंगे? लोगों का खौफ है कि अल्लाह का? कई लोग आज हराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं सिर्फ लोगों के डर से। तो ये भी एक सोच बदलने की बात है। ये दुआ तो आप दे सकते हैं अपनी बच्चियों को कि बेटा इस घर से अब तुम्हारा जनाजा जाए, यानी मरते दम तक तुम्हारा जोड़ निकले, लेकिन ये रूल नहीं है। पहले ही रिश्ते अच्छे करे नहीं है तो अल्लाह कहते फिर खबीस खबीस है, गंदे मर्द हैं, गंदी कर दो। लड़की नमाजी नहीं, कर दें जिससे मर्जी, वो भी नमाजी नहीं, वो भी नहीं, दो नॉन मुस्लिम का भी तो होता है, दो बेनमाजियों का कर दो। तो लिहाजा इसमें हजरत आयशा और नबी सल्लम की तरफ भी इशारा है कि जिन्होंने आयशा पे तोहमत लगाई उन्होंने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि आयशा बीवी किसकी है। एक तैयब मर्द की बीवी क्या खबीस हो सकती है? तो इसी से समझ जाते हैं कि आयशा ने ये काम नहीं किया। इसके बाद आप देखिए आयत नंबर 27 से लेके आगे तक, बीच में आयत नूर और चंद एक दो छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा हैं, अदरवाइज बाकी सब का टॉपिक लीजिए सद्दे ज़राए ज़िना, यानी ज़िना को रोकने के मीन्स, वो सोसाइटी के मेयर्स कि जिनके बाद किसी सोसाइटी से एडल्ट्री और करप्शन और गंदगी का खत्म होता है, उसमें पहली चीज क्या है कि लोगों के घरों में इजाजत लेकर जाओ। बहुत ही खूबसूरत माशर्ती काम आता है। आज इन पे अमल करें तो घरों में भी सुकून होगा और इंशाल्लाह बाहर भी होगा। क्या या अय्युहल लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ए लोगों जो ईमान लाए हो अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाखिल ना हुआ करो, जब तक कि घर वालों की रजा न ले लिया करो और घर वालों पर सलाम न भेजो। ये तरीका तुम्हारे अपने हक में बेहतर है, तवक्को है कि तुम इसका ख्याल रखोगे। हाँ, अगर वहां तुम किसी को ना पाओ तो दाखिल ना हो जब तक कि तुमको इजाजत ना दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापिस चले जाओ तो वापिस चले जाओ। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीजा तरीका है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। अलबत्ता तुम्हारे लिए इसमें कोई हर्ज नहीं कि ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जो किसी के रहने की जगह ना हो और जिनमें तुम्हारे अपने फायदे या काम की कोई चीज हो। तुम जो कुछ जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो अल्लाह को सबकी खबर है। कितने खूबसूरत तरीके से होम स्वीट होम का नसरिया दिया। देखिए, समझ लीजिए, घर जो है ना, बात या भी तो बैतन, अरबी में बैत कहते हैं, वो जगह जहां सुकून मिले। अब घर प्राइवेसी के लिए होता है, घर में इंसान लाइट मूड में होता है, लाइक घर के अंदर इंसान कभी साफ होता है, कभी गंदा होता है, कभी हल्के कपड़ों में होता है, कभी उसने कंघी की है, कभी उसने कुछ नहीं किया। अब मुंह उठा के लोग चल पड़े, और उस दौर में तो दरवाजे भी नहीं होते थे घरों के बाहर, घरों के आगे पर्दे भी बस दफा नहीं होते थे, तो जानवरों की तरह एक दूसरे के घरों में घुस जाते थे। आज भी बस देहाती लोग इसी तरह करते हैं, मना कर दिया, अदब सिखा दिए, आप अपने ऊपर ले। और दूसरी का कि अगर जो और कोई कह दे अभी इस वक्त ना आइए तो गुस्सा ना करो, खुश हो। एक साबिते कहते थे, सारी जिंदगी शायद पर अमल की कोशिश की है कि मैं किसी के घर जाऊं और मैं कहूं मैं, और मुझे कह दे कि अभी चले जाओ, इस वक्त नहीं, बाद में आना, और मैं इस आयत पे अमल करते हुए बाहर आ जाऊं। हम तो सौ सौ बातें सुना दें। हमारे कल्चर में आप देखिए कि किसी के घर जाने से पहले आप फोन कर लेना, मैं आ जाऊं आपके घर, आई हुई थी, कहते बड़े अमेरिकन बन गए, आप पूछ के आते हैं, आइए जी आइए। ये बात देखिए, मैनर्स गैरों ने हमसे ले लिए। तो अब यहाँ बाहर की बात है, आगे एक आयत आएगी जिसमें घर में रहने वाले एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते वक्त भी मैनर्स है, कभी किसी के घर में मुंह उठा के ना जाए। अल्लाह कहते हैं वो कह दे कि आ जाओ तो आ जाओ, नहीं कहे तो चले जाओ, कोई आगे नहीं मिलता फिर भी चले जाओ। कोई चीज ऐसी जहां आपका सामान है, मसलन जैसे आप देखिए कि होटल्स हैं, वहां उन्होंने ओपन का साइन खोला हुआ है, हॉस्पिटल्स हैं जहां आपकी जरूरत है, मोटेल्स हैं, या आपका स्टोरेज कहीं रखा हुआ है, या किसी ने अपनी चाबियां आपको दी हुई हैं कि आपको जब भी जरूरत पड़े आप मेरे घर में आ जाए, मैं घर पे नहीं हूँ, वहां जाकर भी सलाम करके दाखिल हो। और यहाँ एक और मैार याद रखिए, अपने भी घर में जाए तो सलाम करें, खाली घर में सलाम करें। हदीस में आता है कि फरिश्ते जवाब देते हैं। घर में शौहर भी, सहाबा कराम आते थे अपने घरों में, सिर्फ बीवियां होती थी तो सलाम करते थे, बाद हादसे होने का डर होता है। आप समझे घर में कोई नहीं, आप गए जल्दी से जाके आपने हिजाब निकाब उतारा और आप रिलैक्स हो, एकदम अंदर से आपका कोई रिश्तेदार निकल आया जो घर में आया हुआ था, आप घबरा भी जाएंगी, आप उसकी नजर पड़ सकती है, आप एक बापरदा खातून है। तो ये खूबसूरत मैनर्स है। इस्लाम इतना डिसेंट रिलीजन है कि लोगों को चाहते अपने घर में अमन से रहो। घर में कुछ भी बंदा कर सकता है, एकदम कोई आएगा खबर फैल जाएगी, अफवाह फैलेगी, अच्छा कोई आया हुआ था, कोई गया हुआ था, हम गए तो कोई था, किस तरह थे, बातें फैलती हैं, उससे फिर लोगों में बुराइयां आ जाती हैं। मर्दों को हुक्म दिया गया, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, ए नबी, मोमिन मर्दों से कहो अपनी नजरें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए पाकीजा तरीका है, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला इससे खूब खबर रखता है। मर्दों से इस मौजू को शुरू किया गया, पर्दे का मौजू जिसको लोग कहते हैं ना, असल में ये कौन सा पर्दा है, आंखों का पर्दा। मर्द क्या पर्दा करे, नंबर एक नजरें झुका कर रखे, और जहां मर्द नजरें झुका लेते हैं या अंदर आते जाते में इजाजत लेते हैं, औरतों के लिए पर्दा करना इतना आसान और इतना रिलैक्सिंग होता है कि उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। वजह क्या, मर्द आए सलाम किया, पहले अलर्ट हो गए, आप चादर ठीक कर लें, ढीली कर लें, आप रिलैक्स होके बैठे, आप घर में भी किसी के सामने पर्दे के साथ हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और मर्द क्या करे, नजर झुकाए, कौन सी नजर, शहवत वाली, एक नजर पड़ती है, गाड़ी चला रहे हैं, जरूरत में किसी से बात करें, इट्स ओके, फौरन नजर को बचा लें, दैट्स इट। अब मर्द को ये निकाह गया कि चेहरे पे निकाब डालो, तो क्यों डाले, वो कोई इतने हसीन होते हैं कि चेहरों पे निकाब डाले। बाज औरतें बड़ी परेशान है मर्दों को क्या कहते कि इतना, और हमें लंबी लिस्ट है। चलिए आपकी लिस्ट भी सुनाती हूँ, फिर टैली कर लेते हैं किसके साथ अल्लाह ने ज्यादा मामला किया। वकुल लिल मोमिनाति यगदुतन मिन अबसारिहिन्न वयहफज़न फुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, और ऐ नबी, मोमिन औरतों से कह दो अपनी नजरें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इतनी बातें तो कॉमन है ना, बराबर, इक्वालिटी है, मर्द औरत को एक सफ में खड़ा किया। औरत को कुछ एक्स्ट्रा चीजें कह दी कि अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं, बस उसके के जो खुद जाहिर हो जाए, जिन्हें जिसको छुपाना मुमकिन ही नहीं है। बाज दफा छुपाने के बावजूद इंसान के नहीं छुपते, हाथ खुल जाते हैं, बाज दफा पाँव का कुछ हिस्सा खुल जाता है, बाज दफा अबाए के ऊपर अबाए का रंग खुलता है। अब ये नहीं कि इसमें मोती सितारे लगा ले, चमक दमक रख ले, लेकिन आम हालात में छुपता नहीं, कद नहीं छुपता, काट नहीं छुपता, जिसामत नहीं छुपती। जिस हद तक कर सकते हो कर लो, जो नहीं छुप सकता उसको अल्लाह ताला माफ करे। खुद जाहिर हो, जाहिर करना नहीं है, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रखे। दुपट्टा लेने का तरीका सिखाया जा रहा है। जिस माशरे में जाते उतरी वहां औरतें क्या करती थी, अगर आप में से, सिर्फ समझाने के लिए नाम लूंगी, कश्मीरी औरतों को देखा होगा, जो बहुत वो कैलाश टाइप के इलाके में जहाँ बड़ी खूबसूरत सी औरतें होती है ना, तो आपने देखा होगा उन्होंने चादरें जो होती है ना मोटी मोटी लेके पूरी करके ना, तो उसको पीछे डाल देती हैं, सर पे पूरा दुपट्टा बांधा। फिर जैसे समटाइम हमारे पाकिस्तानी कल्चर, इंडियन कल्चर में कुछ लोग वजू करते वक्त दुपट्टा लेते हैं और कहते हैं दुपट्टा ना ले तो वजू होता ही नहीं है, ऐसे लोग बैठ जाते हुए ले ना ले वजू करते वक्त जरूर लेंगे और फतवा भी जरूर देते हैं कि भाई करें। अच्छा, वो क्या करती थी कि सर पूरा छुपाती, पूरे सर के बाल छुपा के, लेकिन गला खोलती, आगे सीना खुलता, बुंदे भी पहन लेती, हार भी पहनती। इसका जिक्र आगे हम सूरत अल अहज़ाब में पढ़ेंगे। लेकिन दुपट्टा पीछे से वो रस्सी सी बना के चुटिया के साथ पीछे करती, यानी सीना खुल जाता। तो अल्लाह ने कहा ये इज नॉट राइट वे टू डू दिस। क्या करो, अपने दुपट्टे के पल्लू सीनों पे डालो। सीने पे कैसे डालेंगे, बिखुमुरी होना। आप देखिए कि यहाँ जो लफ्ज है ना, इस पे सामने नजर रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह समझ आएगा। बल यदरिबन बिखुमुरी हिन्ना लाजिजू भी हिन्ना, और चाहिए कि अपनी ओढ़नियों के आंचल सीनों पे रखें। तो लोग कहते हैं देखो सर पे लेने की तो बात ही नहीं कही। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि खुमर किसको कहते हैं? अल खुमरु मा खामर अल अक्ल, सर के कपड़े को कहते हैं। आप अपने बच्चे से कहें, आप जरा इमेजिन कीजिए, आप थोड़ा सा हंस लें, थोड़े उदास लग रहे हैं मुझे। आप अपने बच्चे को कहती हैं चलो जल्दी से दस्ताने हाथों में पहन लो, और देखो मोजे पाँव में पहनना, और देखो टोपी सर पे पहनना। वो कहेगा अम्मी आपको क्या हो गया, मुझे पता है मोजे का पहनते हैं, मुझे पता है दस्ताने का पहनते हैं, मुझे पता है टोपी का पहनते हैं। कभी आपने कहा कि जरूर दस्ताने हाथ में पहनो, सबको पता है। तो खुमर कहते ही सर के कपड़े को है। लोग कहते हैं किधर दुपट्टा है, इस्लाम में तो दुपट्टा है नहीं। अल्लाह ने तो जन्नती औरत के दुपट्टों की बात की है कि जन्नत की औरत का दुपट्टा इतना हसीन होगा कि अगर उसका एक कोना आसमान से आ जाए तो उसकी चमक जो है वो सूरज को मंद कर दे। तो दुपट्टा लेने का तरीका, इसी से फिर आज के दौर में स्कार्फ और हिजाब का तरीका। बस दफा हमारी सिस्टर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अगर इंटरफेस है दैट इज एक्सीलेंट, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, लेकिन ये गोल नहीं है। आप गले में दुपट्टा नहीं लेते थे, अब गले में लेने लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। गले में लेते थे, अब जरा खोल के लेना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा। उसको सर पे ले, और जो हमारा देसी स्टाइल था आज तो खत्म हो गया, वो जो बटा हुआ दुपट्टा होता था, चुंटे डला हुआ, और उसको किसी के आते गए से पकड़ के बड़े प्यार से सर पे ले लेते थे। ना सर छुपा, ना गर्दन छुपी, ना बस बीच की इतनी पट्टी छुपती थी, दुपट्टा ले लिया। और कब लेते थे हम, जब अजान की आवाज आती थी, है ना, और वो शादी हॉल में बैठे और मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया, तो मैंने खुद औरतों को देखा टिश्यू पेपर पकड़ी से ये मेरे अपनी आंखों देखा वाकया। एक ऐसी भी थी जिनका अपना दुपट्टा था अभी तो बड़ा टका टुका था, लगे थे तो दूसरी को कहा इधर, उसको पकड़ के उसका कोना अपने सर पे, कि निकाह ही ना टूट जाएगा, दुपट्टा गिर गया। कैसा खेल खेला हमने पिछली सदी में, गैर शौरी दी नाम की। पर्दा भी दिखाया तो लोगों को ऐसा ही दिखाया, सारे बाजार में काला बुरका मुंह खोल के फिर रही है, जहां अब्बा जन को आते देखा फौरन घूंघट डाल दिया, अब्बा जी आगे जल्दी से दुपट्टा आगे वो नकाब कर लो। जो अबाए पहने औरतों ने वो क्या पहने, कमीज के ऊपर एक और कमीज, फिटेड कमीज, घुटनों तक काला अबाया और ऊपर एक काला बुरका जिसपे पतले से शिफोन के निकाब थे। सच्ची बात है, हमने हिकमत समझी नहीं। अल्लाह सुभान तआला कोई काम बेवकूफी से करना नहीं सिखाता। जिस चीज का जो मकसद है उसको हासिल कीजिए। अल्लाह तआला ने आपको मुझे यहाँ क्या दिखाया कि देखो तुम अपने सीने को छुपा दे, कि कौन नहीं ये जानता कि औरत के सीने में कशिश है। मर्द तो मर्द, औरत में औरत का जिस्म खुलता है तो नजर पड़ती है, कहां किसी गैर की बात है। अल्लाह ताला ने कहा सीने छुपाने के लिए होते हैं। अल्लाह ने सीने में नस्लों की खुराक रखी हुई है, बच्चे की ये फूड फैक्ट्री है जिसको अल्लाह कहता है छुपा के रखो। खुला दूध होता है तो खराब होता है, मक्खियां बैठती हैं। जब औरतों के सीने खुलते हैं तो उन नस्लें वीरान हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने ये तरीका सिखाया। अब आप कहते हैं कि ऐसा ऐसा हम अच्छे तरीके से करें, इट्स फाइन, स्कार्फ ले लिया, अच्छा ले लिया, कर ले, लेकिन आप उसको इतना पिनअप कर लिए, कर ले लेकिन फिर नीचे एक खुला दुपट्टा ले, आप अच्छे मैचिंग स्कार्फ पहने, जो भी कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं जहां भी है तो उसको ढीला ढाला रखें। इस बाहर के पर्दे को हम सूरत आफ्ताब में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप रिलैक्स रहें, डोंट वरी, उस दिन छुट्टी कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ देखिए फर्क समझिए, सूरत अल अराफ में हमने ये टॉपिक सुना था, वो कहता है लिबास जस्ट लाइक एज अ ड्रेस कोड, कोई अपने घर में भी क्या पहनता है, जस्ट ड्रेस, जो मैं कपड़े पहनू आप पहने वो। यहाँ के घर के अंदर रहते हुए महरम रिश्ते, ये लिख लीजिए, एक बेटी बहू माँ बहन जो भी अपने घर के मर्द जो महरम है उनके सामने क्या पहने, क्योंकि आगे लिस्ट आने लगी है। सूरत अहज़ाब में होगा अब आप घर से खैर से बाहर जा रही हैं तो क्या पहने, इन तीनों को जमा करेंगे दूध का दूध पानी का पानी समझ आएगा। तो घरों में भी बाप हैं भाई हैं बेटे होते हैं, इन रिश्तों के सामने किस हद तक खोलना है किस हद तक नहीं खोलना, अब इसलिए इसको अगली आयत में इसी हिस्से में आगे देखिएगा, फरमाए वो अपना बनाओ सिंगार जाहिर ना करें मगर इन लोगों के साथ, शौहर बाप शौहरों के बाप अपने बेटे शौहरों के बेटे, भाई भाइयों के बेटे बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें अपनी लौंडी गुलाम, और वो जेरे दस्त मर्द जो किसी और किस्म की गरज न रखते हो, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से भी अभी तक वाकिफ ना हो। क्या पता चला ये लंबी लिस्ट, और हर एक के साथ कितना खोलना है सबको पता, सबसे ज्यादा शौहर हकदार है आपकी खूबसूरती का। अब जितना शौहर के सामने आप खुल सकते हैं बाप के सामने उतना नहीं खुल सकते, शौहर के सामने आप जिस हाल हुलिये में आना चाहे आपको पूरी चॉइस है, आप उस हुलिये में भाई के सामने नहीं आ सकते, बाप के सामने नहीं आ सकते, कुंवारे भाई हैं छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं, लेकिन देखिए इसका ताल्लुक हयात से होता है। आप इस तरह सोचिए, मैं सिर्फ आपको फर्क समझाने के लिए कि शायद इससे हमारे दिल में इस चीज को आए, गोश्त किसको अच्छा लगता है, कसाब की दुकान पे कच्चा गोश्त लटकता है अच्छा लगता है, घिन आती है ना, अक्सर आप वहां से गुजरे तो मक्खियां बैठी दिखेंगी, स्मेल भी आएगी। आजकल तो जो अच्छी दुकानें होंगी उन्होंने गोश्त के ऊपर फिर मलमल के गीले दुपट्टे ही डाल दिए होंगे, तो मेरा और आपका जिस्म क्या है, क्या ये गोश्त का तोता नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह कितना तेरा शुक्र है तूने हमें लिबास दे दिया, अपने जिस्म को आप बगैर लिबास के देखें तो गोश्त का पहाड़ नहीं लगता, तो क्या इस गोश्त को बाहर दूसरों के सामने ले लेके फिरेंगे। चले बाहर की तो छोड़े, घर में रहते हुए जब हम चलते हैं उठते हैं बैठते हैं कि हमारे जिस्म का फिगर पोस्चर किस किस साइज के किसको पता चलता। औरत का लिबास ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों भाइयों मर्दों बेटों को तक को पता चल जाए ये मोटी हो रही है ये इतनी हो गई ये वैसी हो गई। आज आप किसी खानदान के यंग लड़के से पूछिए फलां कजन कितनी, वो आपको कमर तक नाप के बता देंगे, रंग ऐसे बालों का रंग ऐसे, क्या एक औरत की ये शान है, क्यों, इसलिए कि इसी से भी खराबियां शुरू होती हैं। चले हम अपने आप को बहुत महजब कहते हैं, अभी तो वो दौर अल्लाह ना कभी हमें दिखाए, बातें तो शुरू हो गई हैं, लेकिन हदीस में आता है क्यामत के करीब महरम रिश्तों में जिना होगा। वजह क्या कि जब इतना एक्सपोजर है तो किसी वक्त भी शैतान आ सकता है, शैतान बाप की नजर में भी आ सकता है भाई की बहन में भी आ सकता है, और सबसे बड़ी बात देखिए कि इंसान अपनी नजर से गिरता है, जब हमारा लिबास टाइट होता है और बहुत ज्यादा सी थ्रू होता है ना तो फिर हमारे पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, फिर इबादत को दिल नहीं करता। आप खुद फील करें, जुमे के दिन सुबह उठे नहाए धोए इतर लगाया कंघी की अच्छा सा खुला दुपट्टा लिए तो खुद ही दिल आता है चलो सूरत पढ़ लो चलो दुरूद शरीफ पढ़ लो चलो नमाज पढ़ लो चलो जुम्मा पढ़ो, कपड़ों का हाल उलिये का कितना गहरा असर होता है, और जब आप जरा ऐसे कपड़े पहने जिसमें सतर भी बुरा नहीं तो जिक्र भी नहीं करने को दिल जाएगा, फिर कहेंगे लो अब इस हाल में कैसे पढ़ो, तो शैतान आएगा और प्लस फिर रहमत के फरिश्ते दूर होंगे, और अल्लाह ना करे अगर इस साल में मौत आ गई तो हमेशा लिबास ढीला ढाला और ऐसा पहनिए कि जिसमें न दिखे। और अगर आपके के घर में शौहर बीवी है कर सकते हैं, लेकिन जज्बात के उभार के लिए थोड़ा वक्त काफी होता है, हर वक्त जो चीज आप एक्सपोज करेंगे उसकी भी अट्रैक्शन नहीं रहेगी, तो लिहाजा कभी गुनाह होता है कभी फवायद होते हैं। लेकिन यहां जो बात है वो ये, घर के मुलाजिम ड्राइवर हैं खानसाम हैं शेफ हैं और उसी के बीच में आप फिर रहे हैं, अल्लाह अकबर, आप कहते हैं ये गुलाम है ये गुलाम नहीं है, हट्टे कट्टे इतने मोटे ताजे घरों में फिर रहे होते हैं बहरे, और लोग उनके सामने होते कहते हैं अब इनको क्या करें, फिर जो खराबियां पैदा हो रही हैं आप जरा उसकी कहानियां तो सुने, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो बस वही हदीस बात करके आगे चलती हूँ, फैज लम तस्तही फस ना माशीता, जब तेरे अंदर हया ना रहे तो जो मर्जी कर, फिर ये हया ही रोकती है। पहली माओ ने कोई इतनी सूरत नूर की तफसीरें नहीं सुनी हुई थी, पहली हमारी नानियां दादियां जो थी उन्होंने कभी सूरत अल-अहज़ाब नहीं सुनी थी, फितरत पे थी, और फितरत से पूछेंगे तो फितरत तो यही चाहती है कि इंसान अपने आप को छुपाए रखे। कितना रिलैक्सेशन मिलता है ना इंसान को ढीले ढाले कपड़ों में, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी फितरत जो है वो सलामत रहे। پھر اس کے بعد اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ۔ یہ ہے امت مسلمہ کو میسج، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے؟ سسٹم ایسے بناؤ، گھروں کا ماحول ایسا بناؤ، عورتوں کی جگہیں الگ رکھو، مردوں کی الگ رکھو۔ ہمیشہ آپ نے دہلی کہہ لیجئے یا کسی پرانے ملک شہر کو یاد کریں، یہ زنان خانہ، یہ مردان خانہ، یہ عورتوں کا راستہ، یہ مردوں کا، ہم سب کا یہی تھا پیچھے۔ آج کیا ہو گیا، گھروں کے نقشے ایسے بن گئے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے باہر سے ہی آپ کو لوگ دیکھ لیں، اندر آنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو غیر محسوس طریقے سے اب حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ عورتوں میں عورتیں ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنے، ڈھنگ کے پہنے، ادب کے ساتھ پہنے، نو پرابلم، اور مردوں کو مردوں میں رہنے دیں۔ اور عورت اپنی اصل کے اعتبار سے صرف عورتوں میں خوش رہتی ہے، یہ آپ مانے نہ مانے۔ جہاں عورت مرد دونوں جمع کر دیے جائیں گے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں بھی پریشان ہوتی ہیں اور مردوں کو بھی کچھ زیادہ ہی ٹائم لگتا ہے اس دن گھر سے نکلتے ہوئے، تیاری نہیں پوری ہو رہی، کیونکہ مسئلہ کئی دیکھیں گی اور کئی دیکھیں گے۔ اور آج پھر اس سے جو خرابیاں ہیں، اللہ معاف کرے، بعض محفل غزل میں جو رومانٹک شعر چل رہے ہوتے ہیں اور جو پھر آنکھیں لگتی ہیں، پھر اپنے مرد میں وہ خواہش نہیں پوری ملتی، پھر دوسروں سے چلتی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے آج؟ آپ ذرا جا کے تو دیکھیں ان لیڈز میں، اپنے مرد سے تو کوئی عورت خوش ہوگی، اور اپنی بیوی تو کسی کو اچھی لگتی ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان نے نفس کو بھرنے والی ساری چیزیں کر دی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے۔